नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें ठेकेदारों की पेमेंट में देरी, भर्ती प्रक्रिया, संस्थानों को बंद करने, हिमकेयर योजना, आबकारी नीति सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया है। नियम 62 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ धर्मशाला से हमारे विशेष संवाददाता।
शीतकालीन सत्र के 7 दिन काफी हंगामेदार रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा ने जहां सदन के भीतर कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं बीते रोज सदन के बाहर भी सरकार के 3 वर्षों के कार्यों को लेकर बड़ी रैली कर हमला बोला। सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को हिमाचल में व्यवस्था पतन बताते हुए 2027 में सरकार को बदलने का कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सत्र के अंतिम दिन भी आज सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं। ठेकेदारों की देनदारियों सहित संस्थानों को बंद कर ने भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर योजना जैसे मुद्दे प्रमुखता से गूंज सकते हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, धर्मशाला।
भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को मुंबई में 3 दिन की चर्चा शुरू हुई। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज इस बारे में जानकारी देंगे। जानकारों का मानना है कि इसमें ऋण दर में 25 आधार अंकों की कमी हो सकती है। बैंक ने इस वर्ष फरवरी से 3 चरणों में प्रमुख अल्पकालीन उधार दर में 100 आधार अंकों की कटौती की है। शिमला जिला के सुनी क्षेत्र में सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर और गाद के मामले को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि सुनी क्षेत्र में कोल डैम प्रबंधन की ओर से सिल्ट के ऊपर सोनार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, जो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 दिनों में सर्वेक्षण कार्य पूरा होगा, जिसके आधार पर सुनी क्षेत्र में भविष्य के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
जब बारिश है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसमें जो बहाव होता है उसमें तो हमें कोई रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो वो सारा जो एक मसला बड़ा गंभीर मसला है। अगर एग्जिस्टेंस हम सबको अपना रखना है तो कहीं ना कहीं जो है हमें मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है कुछ चीजों में। हमारे लिए सबसे बड़ी है लोगों की लाइफ जो है फुली प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी की खेती बाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी उसको जिस भी हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर के बात करनी होगी, उसी के मीटर की प्रीलिमिनरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि सोनार सर्वे एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग कर पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने, मानचित्रण करने और सर्वेक्षण करने के लिए की जाती है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कोतवाली बाजार धर्मशाला स्थित होटल धौलाधार में देर साय आग लगने की एक घटना में होटल में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। HPTDC के AGM ने इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। भारत में मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे संचार उपकरणों के साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वर्ष 2023 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपराध के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में 33,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में दर्ज कुल साइबर अपराध के मामले 52,000 से अधिक थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 86,000 से अधिक हो गए हैं। ये जानकारी गृह राज्य मंत्री ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने भारत को अग्रणी क्वांटम संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना जारी की है। इसमें अनुसंधान और विकास में तेजी लाने, प्रतिभाओं को विकसित करने, व्यवसायीकरण को बढ़ाने और सुरक्षित क्वांटम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। कार्य योजना में स्वास्थ्य सेवा, वित्त, आपूर्ति, ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा और उन्नत कंप्यूटिंग में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के बढ़ते वैश्विक महत्व को रेखांकित किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि राजधानी शिमला सहित अन्य मैदानी इलाकों में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है। पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार आ रही गिरावट से लोगों को शुष्क ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर साफ मौसम के चलते मनाली से रोहतांग सड़क मार्ग पर आगामी 10 दिसंबर तक के लिए वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। इस सड़क के खुल जाने से देश विदेश से आए पर्यटकों को रोहतांग दर्रे पर पड़ी बर्फ व प्राकृतिक सुंदरता के दीदार का अवसर एक बार फिर मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।